نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتوا بارا ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ولو اننا اور اگرچہ ہم ان پر نازل کر دیتے فرشتوں کو اور کلام کرتے ان سے مردے اور ہم ان پر ہر چیز کو جمع کر دیتے اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لاتے. کیا پتہ چلا کہ جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے. پچھلے پارے کے ساتھ اس کا ربط ہے کہ جب کسی کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی تو پھر اس کو ہر طرح کی نشانی بھی اگر مل جائے تو وہ اس نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا. لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ. کیسے؟ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے, الا یہ کہ اللہ کی مشیت یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام دیا مکہ والوں کو تو وہ آپ کے دشمن بن گئے. کیوں بنے؟ کیونکہ اس پیغام کے بعد ان کی زندگی کا رخ بدلتا تھا. اس آیت پہ رکھ کے تھوڑا سا ایک امیجینیشن کرتے ہیں. مکہ کا شہر ہے, اللہ کے نبی وہاں نبی بنا کر کھڑے کر دیے گئے. اللہ کے نبی لوگوں کو کہتے, لوگوں میرے پر ایک کلام اترا ہے, اس کی ایک آیت تم بار بار پڑھو نہ, وظیفہ کرو تمہاری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے. پھر اللہ کے نبی اگلے دن کہتے, تمہیں پتہ ہے آج جو آیت اتری ہے میرے پر, اس کو گھول کے پی جاؤ شوگر کا علاج ہو جائے گا, اور یہ کر لو تو تمہارے سب مردوں کو جابس مل جائیں گی. کیا مکہ والے نبی کے دشمن ہوتے؟ نہیں ہوتے. وہ تو ہو سکتا ہے پانی کی بوتلیں لے کے آ جاتے کہ تھوڑا دم کرتے. لوگ اس طرح کا دین جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹس اوکے, وہ تو مسلمان کیا کافر بھی مان لیں گے جس میں آپ کو فائدہ ہے. دشمنی کس بات پہ تھی کہ لا الہ الا اللہ؟ آج آپ بھی کسی جگہ بیٹھ جائیں نا, ذرا جا کے لوگوں کو وظیفے بتانے لگ جائیں, ٹوٹکے بتائیں, لوگ آپ کے پاس آ کر تعویذ لینے کو تیار ہوں گے. جس دن آپ ان آیتوں پہ عمل کی بات کریں گے اس دن ناراض ہوں گے. قرآن کا بنیادی نقطہ ہی انذار ہے, اس کو جب نکال دیتے ہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا. اب اگلی آیتوں میں ہم اس کی وجہ دیکھیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَالشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, اور اسی طرح سے ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا کر پیش کیا, جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے, بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنے جھوٹ باندھتے ہی رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں اس آیت میں لفظ زخرف القول کو آپ ہائی لائٹ کر لیجیے, بہت ڈیٹیل طلب آئے تھے لیکن ہم اس کو ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں. زخرف کہتے ہیں حقیر اور گھٹیا چیز کے اوپر اچھا رنگ چڑھا کر اس کو پیش کرنا, جس طرح آپ پلیٹنگ کرتے ہیں نا, گولڈ پلیٹڈ, فلاں پلیٹڈ, اسی طرح سے ونیر چڑھا دینا. یہ ہے وہ باتیں جو آج کے دور میں بھی اسلام کے خلاف لوگوں کو پیش کی جاتی ہیں. آج آپ دیکھیے کہ لوگوں نے باتوں کے جال میں لوگوں کو پھنسا دیا. جو بہت ہی زیادہ بدتمیز ہوگا اس کو کانفیڈنٹ کہیں گے, جو بہت زیادہ دین پہ عمل کرے گا اس کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے, جو دین کے ساتھ دنیا کو بھی رکھتے ہوئے بہت ساری نافرمانیاں کرے گا اس کو پروگریسو کہیں گے. بچے ماں باپ سے بدتمیزی کرے کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, ان کے اندر کانفیڈنس ہے. آج کا وہ دور ہے, نقلی کو اصلی بنائے گا. اسی پہ بالکل ایک ریسرچ تھی, اور وہ کیا تھا کہ جو لوگوں نے ڈارونزم کو عام کیا تھا, لوگوں نے جب ان سے ثبوت مانگے تو انہوں نے کہا کہ انسان ایوالو ہوا ہے, پہلے بندر تھا, بندر سے ہوتے ہوتے انسان بنا. لوگوں نے ان سے کوئسچن کیا کہ اچھا پھر کوئی اس کی تصویر, کوئی بات ہوگی, کوئی انٹرفیس ہوگا نا کہ انسان میں تھوڑی سی بندر کی بھی خوبیاں ہو اور انسان کی. تو ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس کا اقرار کیا اور لوگوں کو دکھا دی. اب لوگ کچھ بول نہیں سکتے کہ جبڑا جو تھا, جو تھا وہ بندر کا تھا, باقی جسم انسان کا تھا. کہا دیکھو یہ آ گیا نا دور. لیکن 40-50 سال گزرنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹ تھا. انسان کے منہ میں بندر کا جبڑا لگا کر یہ دکھا دیا کہ انسان بندروں سے پیدا ہوا ہے. یہ ہے زخرف القول غرورا. اور جب سے یہ تھیری عام ہوئی, آپ کہتے کہ ڈارون پریس تھا, خود کو مذہبی عالم کہتا تھا, लेकिन जब इसने डार्विनिज्म पेश किया उसके बाद ये एथियस्ट बन गया। किस तरह की मौत इसकी हुई। तो आज के दौर में जब इस्लाम पर बातें की जाए और कुफ्रिया चीजों को खूबसूरत करके दिखाया जाए, तो आप इस आयत को याद रख लें कि जब लोग असल पे नकल को पेश इतने फख्र से करते हैं, तो अगर मैं और आप असल पेश कर रहे हैं तो हमें कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। एक एक लोहे पे गोल्ड का पानी चढ़ा दें, लुक लाइक गोल्ड, और एक असली गोल्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंस किसके पास होगा? असल को सोना बेचने वाले पे। इस्लाम वालों के पास क्या है? मुसलमान के पास क्या है? रियल गोल्ड है। अगर आज मुझे और आपको इस बात का यकीन आ जाए ना, तो यकीन करें पूरी दुनिया को हम पूरे यकीन से इस्लाम के ये गोल्डन रूल सिखा सकें और लोग हमारे थैंकफुल भी हों। अफ़ग़ैरुल्लाही अब्तगी हकमन, फिर जब ये हाल है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारे इस तरफ किताब नाजिल कर दी, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई। बस तुम शक करने वालों में शामिल ना होना। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। इसको हाईलाइट करें। अल्लाह ताला आपको मुझे खुद ही तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो दीन है ये बैलेंस दीन है, सिदकन व अदलन है। देखिए इस्लाम बराबरी की बात नहीं करता बल्कि अदल की बात करता है। इंसाफ करने वाला नस से है, इंसाफ का लफ्ज देखिए नस, आधा आधा, जबकि इस्लाम बैलेंस सिखाता है। किस तरह से? आप देखिए कि औरत जितना काम कर सकती है इस्लाम ने औरत को उतनी जिम्मेदारियां दे दी। मर्द की जितनी कैपेसिटी है मर्दों को अल्लाह ताला ने उतना काम करना उसके ऊपर लगा दिया। अब एक बाप बेटा जा रहे हैं, एक बूढ़ा बाप है जिसकी हाथ में ताकत नहीं है और बेटा जो है वो बिल्कुल जवान है। दोनों के हाथ में 10-10 किलो के घी के डब्बे पकड़े हुए हैं। ये क्या है? निस्फ निस्फ इंसाफ। जबकि अदल क्या है कि बूढ़े बाप के हाथ में कुछ ना हो और जवान बेटा 10 और 10 20 दोनों पकड़ ले। इस्लाम के असूल कुछ इस किस्म के कि लोगों को जो हुक्म देता है वो बजाहर देखने में ठीक ना भी लगे लेकिन हकीकत में वो लोगों के हक के होते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ यही बात करके फरमाते हैं कोई इसके फरामीन को बदल नहीं सकता और वो सब कुछ सुनता और जानता है। अब अगली आयत को हाईलाइट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। वइन तुती अक्सरा मन फिल अर्द युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह, और ऐ नबी अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और क्या सराइयां करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि कौन इसके रास्ते से हटा हुआ और कौन सीधी राह पर है। इसको देख लीजिए आज क्या जुमला बोलते हैं। शायद आप में से किसी को ये आयत पढ़कर याद आ गया हो, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। आज ही डेमोक्रेटिक सिस्टम में सीखा ना अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मेजोरिटी इज नॉट अथॉरिटी। अक्सर के पीछे लगोगे तो भटक जाओगे क्योंकि अक्सरियत ख्वाहिशों के पीछे चलती है। क्या अगर अक्सरियत गे मैरिज को वोट दे दे तो वो जायज हो जाएगी? क्या अक्सर लोग कह दें कि औरत को मर्द और मर्द को औरत बना दो तो वो जायज हो जाएगा? तो लोगों को नहीं फॉलो करना, अकलियत हमेशा हक पे होती है। अक्सरियत के पीछे पड़ने वाले भटक जाते हैं। फिर अगर तुम अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो इसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, इसकी तफसील वो तुम्हें बता चुके हैं। कहां? सूरत माईदा में। बकसरत लोगों का हाल यह है कि इनके बगैर महज ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। आप देखिए कि आज एक और भी चीज सुनने को आई और वो क्या कि बच्चे गोश्त नहीं खाते। क्यों? कहते हैं एनिमल राइट्स के खिलाफ है कि आप गोश्त काटें। हाय, जानवर को जिबा कर दिया, अल्लाह ने इनको किस लिए पैदा किया? आज आप देखिए वो लोग जो एनिमल राइट्स के नाम पे बड़ा बड़ा काम करते हैं बाज जब वो इंसानों से दूर है। फ्रांस में एक खातून थी तो जो एनिमल राइट्स की नुमाइंदगी करती हैं, जब उनके अपने घर बच्चा पैदा हुआ तो उसने कहा कि मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकती, इसको ले लो। कहती है आई फील आई मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है, लिहाजा उसको पीछे करो। जितना इंसान जानवरों की बातें ज्यादा करेगा ना उतना इंसानों से दूर होगा। और आज वही कल्चर है, अपने बच्चे बुरे लगते हैं और जानवरों के बच्चे पाले जा रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे तो आपके पास रहना पसंद नहीं करते। फिर आपको कोई तो जानदार हिलती जुलती चीज घर में चाहिए तो फिर आप अपने घरों के अंदर एक से ज्यादा ऐसी चीजें लेके चलते हैं। और मेरे लिए ये पहला मुकाम था जब मुझे किसी ने बताया कि जिस तरह इंसानों के बच्चों की बेबी सिटिंग होती है इस तरह कुत्तों के बच्चों की भी होती है। एक घर है और उसमें 14 कुत्ते हैं। क्यों? कि वो घर वाली जो है वो कुत्तों की बेबी सिटर है। अब आप सोचिए जिस घर में 14 कम से कम है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस घर में रहने अली का आलकर वो नीम पागल हो चुकी होंगी। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंसान को इंसानियत की कदर आ जाए। फिर फरमाए वला ताकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और जिस जानवरों को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह ना किया गया हो इनका गोश्त ना खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शैतान अपने साथियों के दिलों में शकूक व एतराज़ात इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, लेकिन अगर तुमने इनकी इताअत कबूल की तो यकीनन तुम मुशरिक हो। प्यारी सी आयत, इसको हाईलाइट कीजिएगा। अब अमन का नमई तनफा यही ना हो, क्या भला वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने इसको जिंदगी बख्शी, इसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान जिंदगी की राह तय करता है, इस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीखियों में पड़ा हुआ और किसी तरह से उसके अंदर से निकलता ही ना हो। ये कौन सा जिंदा और कौन सा मुर्दा है, समझ गए? हदीस में मोमिन को जिंदा और काफिर को मुर्दा कहा गया। क्यों? क्योंकि मोमिन का ताल्लुक अल हय से होता है, अल कय्यूम से होता है, और काफिर कौन है? जो अल्लाह की नेमतों को देखते बूझते उसे आंख बंद कर लेता है। और यहाँ नूर यमशी भी ही फिन्नास से मुराद किताब का नूर है। हकीकत यह कि जब किताब की रोशनी जिंदगी में आती है तो इंसान इसी के साथ चलता है। और इस आयत से एक और बात भी समझ आती है कि इस किताब को पढ़कर आप सिर्फ मदरसे या मस्जिद में नहीं बैठेंगे बल्कि यमशी भी ही फिन्नास, लोगों के अंदर चले फिरे। आज मुसलमानों के जवाल की एक और अलामत है, और वो क्या है कि उन्होंने दीन और दुनिया दो मुख्तलिफ चीजों की टर्म्स ईजाद कर ली। मस्जिद में आएंगे नमाजी, उमरे पे जाएंगे उमरा करने ले हाजी, रोजे रखेंगे रोजों में रमजानी। लेकिन जब अमली जिंदगी के कोई मामले सामने आते हैं तो फिर क्या होता है, वो कहते नहीं अब लोगों की मर्जी के बनो। यहां इस आयत से पता चलता है कि जब तक हम इस कुरान और इस किताब और इस्लाम को मस्जिदों से मदरसों से बाहर निकालकर चलते फिरते बाजारों और मॉल्स और दूसरी जगहों पर नहीं लेकर जाएंगे तब तक आम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो आपके मस्जिद में आकर कुरान पढ़ना चाहें जो नॉन मुस्लिम है? क्या आप जा सकते हैं किसी चर्च में बाइबल पढ़ने? तो वो क्यों आए? कौन सी किताब लोगों को पढ़ानी है? इस 5 से 6 फुट की किताब यमशी भी ही फिरना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में चलते फिरते कुरान बने। फिर देखिए कि अल्लाह ताला कितने लोगों की हिदायत का जरिया आपको और मुझे बना देता है। वकजालिक जालनाफी कुल्ली करियत नकाबिर मुजरिमीहा, काफिरों के लिए तो इसी तरह उनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए, और इसी तरह हमने हर बस्ती में इसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया कि वहां अपने मकरो फरेब का जाल फैलाएं। दरअसल वो अपने फरेब के जाल में आप फंसते हैं मगर इनको इसका शऊर नहीं है। ये भी बात नोट करने के काबिल है कि आम दर्जे के लोग जो होते हैं ना, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, वो इस्लाम की इतनी मुखालफत नहीं करेंगे, अल्लाह के तरीकों को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं होती। वो बेचारे पहले ही फितरत के साथ चल रहे होते हैं, हैंड टू माउथ है, जिंदगी गुजार दी, किसी देहात में रहते हैं, खुली छत के नीचे सोते हैं। कुरान की दावत की सबसे बड़ी चोट इन लीड्स पे पड़ती है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल टकराता है फिर उस किताब से, तो फिर अखीर वो मुजरिम बन जाते हैं ऐसी बात कहने वालों के। वैसा चाहत हम आयतुन कालू, और जब इनके पास कोई आयत आती है तो वो कहते हैं हम ना मानेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए हमारे अंदर से ये आवाज ना उठे जब तक कि वो चीज खुद हमको ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है वो वक्त जब ये मुजरिम अपनी मक्कारियों की पदाश में अल्लाह के यहाँ जिल्लत और सख्त अजाब से दो चार होंगे। कोई शख्स कितना भी अमीर हो जाए क्या वो उस मुल्क का कानून मानता? यानी अगर आम मेरे आप जैसे आम लोगों को रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी पड़ती है तो क्या इस शहर के करोड़पति या मिलियनेरियंस को भी रोकनी पड़ती है? पड़ती है ना, तो बस यही अल्लाह के यहाँ रूल है। हाँ ये अलग बात है कि आम गाड़ी रुक जाएगी तो खुशी से आगे चल पड़ेगी, बड़ा बंदा जब अपनी गाड़ी को हर थोड़ी देर बाद रोकेगा रेड लाइट पे तो उसकी अना पे चोट तो पड़ेगी। वो क्या चाहता है, हमारे लिए रास्ते साफ हो, हट जाओ बच जाओ। सदर साहब की गाड़ी आ रही है, उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता है। तो जो इस दुनिया में प्रोटोकॉल लेना चाहता है फिर उसको अल्लाह ताला की बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। लिहाजा ऐसी बातों को सुन के क्या कहते हैं, हम तो नहीं मानेंगे। हमें डायरेक्ट प्रोटोकॉल दिया जाए कि क्या रसूल को दिया था, लाओ दिखाओ भाई क्या आया तुम्हारे रसूल के पास। नऊज़ुबिल्लाह उनका दावा यह कि रसूल की तरह फरिश्ता हमारे पास आए, पर मैं अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है जब वो मुजरिम अपनी मक्कारियों की पदाश में अल्लाह की जिल्लत और अजाब से दो चार होंगे। अल्लाह किसको हिदायत देता है, ये इस बारे की आयत तदब्बुर में से एक आयत है। फमन युरिदिल्लाहु यहदीहु यशरह सदरहु लिलइस्लाम, पूरी आयत सुनिए तवज्जो से थोड़ी और फिर इसके बारे इंशाल्लाह हम इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे। बस हकीकत ये है कि जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा करता है इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है इसके सीने को तंग कर देता है, और ऐसा भेजता है कि इस्लाम का तसव्वुर करते ही से यूं मालूम होने लगता है गोया कि इसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर रही है। इस तरह अल्लाह ताला हक से फरार और नफरत की नापाकी इन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते, हालांकि ये रास्ता तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है, और इसके निशानात इन लोगों के लिए वाजह कर दिए गए जो नसीहत कबूल करते हैं। क्या मिलेगा इनको? लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, इनके रब के पास इनके लिए सलामती का घर है। वहुवा वलीयुहुम, और वो इनका दोस्त है, सरपरस्त है। बिमा कानू यामलून, उस सही तर्ज अमल की वजह से जो उन्होंने इख्तियार किया। इन आयत में हमने दो किरदार देखे, एक जिसका शरह सदर हो गया और एक वो जिसका सीना घुटा हुआ। आप इस मिसाल को कैसे समझेंगे? हार्ट पेशेंट से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे दिल की बीमारियों से, लेकिन जब दिल की बीमारी हो जाती है तो अमूमन क्या रवैया होता है? नंबर एक, ऐसे लोग पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, बहुत वॉक नहीं कर सकते, तेज नहीं चल सकते, और ऊपर की तरफ तो बिल्कुल नहीं चलते। खाना खाने के फौरन बाद उनको वॉक नहीं करनी होती, और जो भी सिम्टम्स आपने कभी किसी के अंदर देखी होंगी। इसके बाद जो हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए कोई मसला नहीं है। जिस बंदे का दिल इस्लाम के लिए खुल जाता है उसका हाल क्या है कि उसका दिल सेहतमंद है, पहाड़ भी चढ़ना पड़े तो चढ़े। उसको दीन इस्लाम के मुश्किल से मुश्किल अहकाम, वेरी इजी, इट्स ओके, नॉट बिग डील, आई विल डू इट, आई विल ट्राई, आई विल दिस 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 दिस। इसके बरक्स जो दिल का बीमार हो जाता है उसको इस्लाम के छोटे छोटे हुक्म बोझ लगते हैं, चार बाल दाढ़ी के उसके लिए रखने मुश्किल है, एक दो गज का टुकड़ा वो अपने सर और कंधों पर नहीं डाल सकता, उसकी जान चली जाती है। उसको सारा माइग्रेन होता ही तब है जब वो सर को छुपा ले। वजह क्या? क्योंकि बीमार जो है, तो बीमारी कब आती है, कब दिल बीमार होते हैं? जब केयर नहीं की जाती। तो जो लोग केयरलेस लाइफ गुजारते हैं ना, उनके दिल बीमार हो जाते हैं। जिनको अल्लाह के हुक्मों की परवाह नहीं, वो कहते हैं मौज करो, मस्ती करो, डोंट डिस्ट्रैक्ट अस, प्लीज हमें तंग ना कीजिए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, हमारी खुशियों में आप भंग ना डालें, रंग में भंग ना डालें। ऐसे लोगों को के सीने तंग होते हैं। जब कभी नेकी करना मुश्किल लगे तो इस आयत को सोच लें, कहीं अल्लाह ना करे कोई क्लॉट तो नहीं आ गया दिल में, कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ गया, कहीं मेरी कोई आर्टरी तो नहीं रप्चर हो गई, क्या हो गया मुझे? एक मोमिन, एक हेल्दी पर्सन होता है, उसको अल्लाह के हुक्म इस ओके। आप देखिए ना, मिसाल देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए। आप किसी को कहें कि आपको इस कमरे का फर्नीचर बाहर मूव करना है, आम हालात में भी देखिए तो कुछ कहेंगे नॉट अ बिग डील, इट्स ओके, हम एक एक पकड़ते हैं और ले चलते हैं। कोई कहेगा इट विल टेक सम टाइम, इट्स हार्ड, और कोई कहेगा नो, बैठे रहो चुप करके, ये मुमकिन ही नहीं है। फर्क किस बात का है? आपकी हेल्थ का, आपकी एनर्जी का, और आपकी आदत का। जिस तरह दुनियावी काम कुछ लोगों को मुश्किल या आसान लगते हैं, इसी तरह दीन के काम मुश्किल नहीं लगते उनको जो करते हैं। कैसे करते हैं? इस पे मैं हमेशा, एक बड़ी भोली सी बहन याद आ जाती है मुझे, एक जगह हमारी स्टूडेंट थी तो वो मुझे ले गई, किसी उनकी दोस्त ने कोई बहुत ही पौष किस्म की पार्टी रखी हुई थी और कोई फंक्शन था, तो उनका ख्याल था कि वहां वो लोग आएंगे जिनको दर्स का नाम लेके बुलाएं तो नहीं आते, ये उनका ख्याल है, मेरा नहीं है वैसे ये, बहरहाल। तो ऐसे मौके पे उन्होंने कहा कि आपको मैं ले जाऊं तो आप एक छोटा सा वहां मैसेज दे देंगी। मैंने कहा मैं तो कभी नहीं मना करूंगी, मुझे आप जहां मर्जी ले जाएं, अपनी दोस्त से बात करें। उन्होंने उनसे बात की, अल्लाह का शुक्र है वो भी बड़ी खुश हो गई, वो ले गई वहां, और वाकई क्रीम क्राउड ऑफ द सिटी था, यानी मेरा फेवरेट क्राउड के जो ओवर सेंसिटिव है और जो वाकई सुनने वाला है, वो लोग थे जिन्होंने सुना नहीं। खैर जो दर्स हुआ थोड़ा, वो मैंने कहा मेरा इतना ही टाइम है, उन्होंने कहा नहीं आप और बात करें। मैं 15-20 मिनट के लिए गई थी, शायद उन्होंने एक घंटा लिया, जब घर वाले और सुनने वाले कहें तो आप ना बोले। बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट, इतने मुहज्जब डिसेंट पढ़े लिखे लोग थे। और उसके बाद जब दर्स खत्म हुआ तो उनमें से एक सिस्टर उठी और कहने लगी, जो भी उन्होंने कहा कहने लगी, उसके आखिरी जुमले बताते, कहती ऐसा दर्स तो साल में एक बार जरूर सुनना चाहिए। ये है मसला, कुछ लोग साल में एक बार को भी कहते हैं इट्स ओके, क्योंकि उन बेचारों ने नहीं सुना, और कोई आप जैसे हैं सुबह के बाद पूछते हैं कि शाम को किधर है। किस चीज का फर्क है? कैपेसिटी का फर्क है। आप कहते हैं एक बार बोलना, आप कहते हैं दो बार बोलना, आप कहते हैं चुप कब रहना है वो बता दें। तो ये अपनी विट में, और आप देखिए कि वजन उठाने की आदत एकदम तो नहीं पड़ती ना, आपने ना उठाए और आपको कोई थोड़ा सा भी कह दे तो आप परेशान होंगे। तो जो उठाते हैं, कभी सड़कें बनाते और मजदूरों को उठाते देखा करें सामान, बस यही बात है, आज अगर दीन इस्लाम के अहकामात बोझल रखना, डोंट वरी, डोंट लीव इट। और मुझे और बाकी सब दीन की बात बताने वालों का लाजिम फर्ज है कि वो लोगों की रियायत करें। देखिए, हर बंदा मुख्तलिफ जगह से आता है। छोटी सी एक मिसाल दे देती हूँ, जैसे आप देखिए कि आप में से कोई रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, चार सिस्टर्स हैं और बड़ी रोड है जिसके फोर रोज चल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और आप सब जानते हैं अमेरिका में लेफ्ट साइड में सबसे फास्ट लोग होते हैं, फिर उससे कम, और सबसे आखिरी रो में कौन होते हैं कि जिनको एग्जिट लेना होता है। यही सिचुएशन है ना। अब आप एक रोड पे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको एग्जिट लेना है फर्स्ट लेन में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब आपका एग्जिट आएगा, आप एक इंडिकेटर देंगी, निकल जाएंगी। आपके बाद वाली को जिनको देनी है वो क्या करेंगी? थोड़ी सी तो मुश्किल है ना, उनको थोड़ा सा आपको इंडिकेट करके, इंडिकेटर देके फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट पे आना पड़ेगा, फिर फर्स्ट से वो एग्जिट लेंगी। थर्ड वाले का उससे भी मुश्किल है, और जो फोर्थ में बेचारा फंसा हुआ है, उसको एग्जिट लेने से पहले थर्ड, फिर टू, फिर वन, फिर कहीं एग्जिट लेना। बस आप सोचिए, ये जिंदगी की दौड़ है, लोग गुनाहों में पड़े हैं, माहौल का असर है, मुआशरे का असर है। पहले पहचानिए कि लोग कहाँ खड़े हैं। फर्स्ट रो वाला कौन है? जिसका माहौल दीन वाला है, माशाल्लाह शुरू से घर अच्छा है, माँ बाप ने भी कहा, बात भी समझ आ गई। अब वो किसी गुनाह में पड़ भी गए गुनाहों की रोड से, जब कुरान की आवाज सही, छोड़ दो, ये छोड़ दिया, एग्जिट लिया, कहा तौबा करो, इस्तगफार, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। लेकिन उसी रोड में फोर्थ लेन वाली सिस्टर भी बैठी है कि जिनका माहौल खराब, जो तो हो सकता है उनके माँ बाप में कोई एक मुस्लिम भी ना हो सकता है, वो बोन एंड रेस्ड ऐसे ही मुआशरे के हो जहां दुपट्टे की तो आप बात ही ना करे, कपड़े पूरे पहन लो तो वो उसको नेक समझे। अब उसको जब आपका कुरान सुनकर एग्जिट लेना है, तो उसको टाइम दीजिए, स्लो स्पीड करनी पड़ती है। एकदम 80 की स्पीड से आप गाड़ी रोक सकते हैं, गाड़ी उलट जाती है। ब्रेक लगाने से पहले स्पीड स्लो होती है। तो अपने ऊपर जब लें तो जल्दी करें, दूसरों को बताएं तो स्लो डाउन। लेकिन याद रखिए कि स्लो का मानी ये नहीं कि छोड़ ही दें। आपको पता है, हाईवे पे आप गाड़ी हल्की भी नहीं चला सकते, उधर आपको एक स्पीड से चलना ही पड़ता है। और क्विकली क्विकली आप लेन भी चेंज कर रहे होते हैं, और जल्दी जल्दी से आप दूसरों से आगे भी निकल रहे होते हैं कि कहीं पिछले वाली गाड़ियों को हिट ना कर दें। तो गुनाहों को छोड़ने का यही सफर है। मत सोचिए कि हमारे सीने घुट गए, हम तो मर जाएंगे, अब तो हार्ट अटैक ही होने वाला है। नहीं, बस हिदायत की तलब पैदा हो जाए। अल्लाह ताला ने हिदायत को किसी जगह से नहीं मुकरर किया, इलाके से, लोगों से नहीं। हिदायत का ताल्लुक आपके मेरे इरादे से। जिस दिन आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। जितना स्ट्रांग आपका डिसीजन है ना किसी नेकी को अपनाने का, इस साल उतनी अल्लाह आपको ताकत दे देगा। और अगर अभी भी सोच रहे हैं नहीं, एक और नहीं, जरा और नहीं, जरा 15 दौरे कुरान तो पूरे हो जाए फिर ही आयतों पे अमल करेंगे जिस पे आज तक नहीं किया, तो आप देखिएगा वो अब मेरा हर एक साल 15 हो ही जाने हैं। 14वां दौरे कुरान है मुझे, जो अमेरिका में आने के बाद याद है, 2001 में पहली दफा अमेरिका में दौरे कुरान गई थी। इससे पहले पाकिस्तान में पढ़ाती थी, लेकिन शादी के बाद यहां जब सिलसिला शुरू किया, ये 2015 दौरे कुरान है जो इस मुख्तलिफ जगह से चल रहा है। और कुछ साथी ऐसे होंगे जरूर जो 14 ही दफा सुन चुके होंगे, जो पुराने साथी हैं। तो अगर अभी नहीं दिल जमा किसी बात पे, तो हो सकता है ये 15वीं पे हो जाए, 25वीं पे हो जाए, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। और सुनते रहना और हर साल सुनना इस बात की अलामत है कि तब्दीली आ रही है। तो अल्लाह के नबी ने लोगों को गवर्नर चेंज नहीं किया, हम फतवे देकर लोगों को दीन से ना दूर कर दें, और अल्लाह ताला हमारे अखलाक को खूबसूरत कर दे। और देखिए, मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ तो मैं सारी थकन अपनी दूर होती हुई महसूस करती हूँ। लहुम दारुस्सलाम, इमेजिन कीजिए, रोड लंबी है, सफर ही सफर है। आप चाहे आरामदेह गाड़ी में, लेकिन आप समझे ह्यूस्टन से शिकागो गए, नॉन स्टॉप 18 आवर्स की ड्राइव है ह्यूस्टन टू शिकागो। जो मर्जी आपको रास्ते में सहूलत मिले, लेकिन थकन तो होती है ना। जब शिकागो में आप अपने होस्ट के घर के बाहर खड़े हुए, तो क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ो चीजें, बस ये कैफियत होगी हमारी जब हमारे सामने जन्नत आएगी। लहुम दारुस्सलाम, अल्लाह कहेगा कमन, फरिश्तो बुलाओ इनको, तेब तुम सलाम उन कौलम रब रहीम। अल्लाह दरवाजे खोल के बैठा हुआ जन्नत के मेरे और आपके लिए, सिर्फ मुझे और आपको दिल खोलने की जरूरत है। और याद रखिए, दिल नहीं खोलेंगे ना तो ये कुरान ऊपर से फिसल जाएगा। बारिश का कतरा मट्टी के अंदर ना जाए तो फसल नहीं उगती। पत्थर पे भी बारिश पड़ती है लेकिन वो सूख जाती है ऊपर, अंदर कुछ नहीं जाता। इस वक्त मेरे और आपके ऊपर इतनी तेज बारिश हो रही, इतनी तेज तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं कुरान, जितना हम तेजी से इतना कुछ एक दिन में सुन रहे हैं। तो इस मूसलाधार बारिश के लिए अल्लाह से कही, अल्लाह मैं अपना दिल खोलती हूँ, अल्लाह मेरे दिल में इस पानी को डाल दे, دل کی مٹی نرم کر دے، یہ گندے اس میں نرمی آئے، تبدیلی آئے، پھر دیکھیے گا عمل اور خیر کے جو پودے پھوٹیں گے آپ کے ساتھ ہی حیران رہ جائیں گے، جو کل تک آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے وہ کہیں گے واہ تم میں اتنا اتنا ٹیلنٹ تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو برائیوں میں آگے ہوتا ہے نا وہ نیکیوں کا موقع جب ملے اس میں بھی نیکی میں ہے. کاف کفر میں جو سردار ہے وہ نیکیوں میں بھی سردار ہے. کیوں آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا؟ کیونکہ وہ کفر میں بڑے بھاگے تیز تھے، لیڈر تھے، اور جب اسلام میں آئے تو اسلام کے لیڈر بن گئے. تو سکلڈ لوگ، دنیا کے جس کو آپ کہیں کہ جن کو لوگ رول ماڈل بنائیں، جب وہ دین پہ آتے ہیں تو پھر تبدیلی آتی ہے. جب تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، عبادت چھپ کے کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک پروٹوکول ہے کہ اسلام بند دروازوں میں تھا یہاں تک کہ عمر مسلمان ہوئے اور اسلام کھلے عام پہ آ گئے. ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی دفعہ لوگوں نے حرم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی. کہتے تھے جس کو برا لگتا ہے آؤ. یہ وہ دور تھا کہ جب لوگوں کو کہا جاتا تھا اپنا اسلام چھپانا، ان کو بھی یہی تھا. اور ان کا حال کیا تھا؟ جب کلمہ پڑھا کے اللہ کے نبی کی محفل سے واپس آئے تو باہر کھڑے ہو کے سوچتے ہیں میرے اسلام لانے کا سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا. پھر کہتے ہیں ہاں میرے دوست ابو جہل کو. اب ہم ہوتے ہم کہتے ہیں اب اس سے تو ذرا شکل ہی نہ دکھاؤ نا، اب نہ جاؤ ان کے گھر. فوراً سیدھے وہاں سے نکلے، اپنی تلوار کی نوک سے کٹ 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 اس کا دروازہ کھٹکایا. اس نے دروازہ کھولا، او عمر بن خطاب تم کیا حال ہے، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، یہی کہو گے نا عربی میں. تو عمر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا خوف اور لرزہ تاریخ ابو جہل پہ کہ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا، اللہ یہ جرات ہمیں دے. ہم گناہ کرتے ہوئے بھی نہ ڈرے تو پھر ہم نیکی کرتے ہوئے بھی نہ ڈرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ دار السلام کو کھول دے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ ان کا ولی ہے. اور اس کے برعکس اب وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا اس دعوت کو، یوم یخشر و یوم یخشرہم جمیعا، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جنات سے خطاب فرمائے گا، اے گروہ جن تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جن کو اللہ بچانا چاہے گا. آئیے دعا کریں اللہ ہمیں بچا لے. آگ سے صرف وہی بچے گا الا ماشاء اللہ. اے اللہ تو ہمیں بچا لے، اے اللہ ہماری نسلوں کو بچا لے، ہمارے بھائی بہنوں کو اس آگ سے بچا لے، ہمارے شوہروں ہماری بیویوں کو بچا لے، ہماری دوستوں کو بچا لے، یا اللہ کل امت مسلمہ کو بچا لے، اور اللہ تمام انسانوں کو اس آگ سے بچا لے. اللہ وہ آگ بڑی شدید ہے، تو نے خود بتایا، اللہ ان کافروں کو دنیا میں اسلام دے دے تاکہ یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اور اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا لے. فرمایا کہ ان ربک حکیم علیم، اور آپ کا رب خوب حکمت والا اور خوب علم والا ہے. دیکھو اسی طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن اور انس، یہاں سے آپ کو تو چل رہا ہے کہ محاسبہ قیامت کے دن صرف انسانوں کا نہیں ہونا، جنوں کا بھی ہونا. اے جن اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہ آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے. دیکھیے کیا سوال ہے اسے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. وغرتہم الحیات الدنیا، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اللہ آج یہ دھوکے آنکھوں سے ہٹا دے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف ہوں.